ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय गीता बहन, आप सभी एक हाथ हिला करके स्वागत करेंगे। इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ साथ गीता बहन के आपने कई क्लासेस सुने होंगे, इसका कारण है आपने ज्ञान गुजरात से लिया और गुजरात में ही आपने 22 वर्ष इस ईश्वरीय सेवाओं को दिया। 21 वर्ष आपने मधुबन बाप दादा के घर में सेवाएं दी, तो 21 वर्ष बहुत लंबा समय है। और इस बीच में तो आप कई बार आए होंगे, है ना, तो इसलिए आप सब पहचानते हैं। फिर भी हम ये बताना चाहेंगे कि गीता बहन 46 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में है और 43 वर्षों से आपने अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की है। साथ साथ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन यहाँ जब राजयोग शिविर वालों को ले आते हैं या विंग्स के जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें जो शिविरें करानी पड़ती हैं, तो आप उनकी शिविरें भी कराती हैं। बट्टी में जो भाई बहन आते हैं तो उनके बट्टी के क्लासेस भी कराते हैं। बाप दादा से मिलन के लिए आते हैं तो उस समय भी आपके क्लास का लाभ हर भाई बहनों को मिलता है। आपने कई ऐसे कार्य किए और आप कुशल नेतृत्व की धनी हैं, क्योंकि वर्तमान समय जो कुमारियों की ट्रेनिंग होती है उसमें भी आप रतनमणि दादी के साथ अंग संग रह करके कार्य करती हैं, उस जिम्मेवारी को संभालती हैं। इसलिए गीता बहन के लिए ये कहें कि हमने जब से पहचाना या संबंध में आए हैं कि तब से उनके कर्म को करते हुए हमने देखा, चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, हर कार्य को करते समय उस समय वह कर्म करते चलते हैं, करते चलते हैं। जैसे आपका नाम गीता है तो गीता के अंदर एक वाक्य आता है कि अर्जुन तू कर्म करता चल, कर्म के फल को मत सोच। ठीक इसी प्रकार से गीता बहन भी है, आप समय पर कर्म को कर लेती हैं लेकिन कर्म के पीछे उसका फल वो जुड़ा हुआ ही है, उसे सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्यों की धनी है। तो इसलिए मैं गीता बहन से निवेदन करती हूँ कि आज का विषय है ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न जीवन। ब्राह्मण जीवन में रहते हुए भी हम निर्विघ्न कैसे रहे। बाबा ने यह इस वक्त सोमवर्क भी दिया कि निर्विघ्न स्थिति बनाओ, तो वह हम निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाए इस विषय पर स्पष्ट करेंगे गीता बहन।
ओम शांति। बाबा की तपस्या भूमि और कर्म भूमि, ऐसी मधुबन वरदानी भूमि में आप सबको तपस्या का मौका मिला है। अच्छा लग रहा है, साइलेंस भी है और उसमें योग के वाइब्रेशंस भी हैं, तो ये मीठी मीठी शांति अच्छी लगती है। हाँ, शहरों में आवाज की दुनिया में हलचल में रहते हैं तो बहुत शांति की दुनिया अच्छी लगती है। हाँ, आनंद आ रहा है सबको, सेवा के आनंद का अनुभव तो है ना। सेवा करते हैं सेंटरों में, प्रोग्रामों में, मधुबन में भी सेवा में आते हैं, तो सेवा के आनंद का अनुभव हरेक को है, है ना। उसमें भी अच्छा लगता है, एक दूसरे से मिलना होता है, नई नई बातें देखने को, सुनने को, करने को मिलती है, है ना? तो सेवा का आनंद भी सबको अनुभव है और संगठन के आनंद का भी अनुभव है, है ना? मधुबन में बड़े बेहद के संगठन में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? हमारा निश्चय और दृढ़ हो जाता है। अनेकों के साथ पढ़ाई करना अच्छा लगता है। देश विदेश के बाबा के वैरायटी बच्चे है ना, उनको देखते हैं तो खुशी होती है ना कि देखो बाबा के बच्चे सारी दुनिया में फैले हुए। अकेले अकेले पुरुषार्थ करो तो थक भी जाते हैं, आलस भी आता है, इरेग्युलर भी हो जाते हैं, पर बड़े संगठन में अनेक निश्चय बुद्धि, अनेक पुरुषार्थी, अनेक बाबा पर कुर्बान जाने वाले बच्चों को देखते हैं, मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और ये मौका आपको मिला है तपस्या का आनंद अनुभव करने का। सबसे न्यारे है ना, साइलेंस में रहते हैं और न्यारे रहते हैं, तो स्व में स्थित होने का आनंद है अनुभव। आत्माभिमानी स्थिति के आनंद का अनुभव किया, अच्छा लगा सबको? सेवा में और परिवार में तो सबसे मिलना जुलना, बात करना, देखना, सुनना, वो तो अच्छा लगता है, पर तपस्या में तो सबसे न्यारा होना, साइलेंस में रहना, स्वचिंतन करना, तो उसके आनंद में अच्छा लगा? पीछे वालों को अच्छा लगा? भक्ति में तो गायन है ना, आत्मानंद, सुना है शब्द? निजानंद, स्वरूपानंद, भक्ति में तो गाया हुआ है ना ये आनंद, परमानंद, परमात्मा की याद का आनंद गाया हुआ है। पर संगम युग में ये प्रैक्टिकल अनुभव करने को मिलता है, तो यहाँ आत्मानंद और परमानंद दोनों का आनंद अनुभव हुआ ना? ब्राह्मण जीवन में भी है ना, हम चाहते हैं कि हमें, क्योंकि सेंटर में तो घर से आते हैं ना, तो एक घंटा दो घंटा आ सकते हैं, फिर भागते हैं जल्दी जल्दी, वे नौकरी पर जाना, घर में काम करना, भोजन बनाना, तो जल्दी जल्दी वापस जाते हैं, तो ये इच्छा रह जाती है कि फुर्सत से बाबा को याद करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये भी इच्छा बाबा ने पूरी की ना कि यहाँ आप फुर्सत से आए, है फुर्सत? घर तो याद नहीं आया, मधुबन में ही रहे या घर में भी गए? मधुबन में भी, ब्रुकुटी में रहे या कहीं पेट में, शरीर में, कहाँ रहे? हम कई बार योग में बैठते हैं पर ब्रुकुटी में नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं? चेक किया आप सबने? और बाबा के पास रहे। मधुबन में रहना माना बाबा के पास रहना, ये तो बाबा का घर है ना। बाबा जब साकार में थे तो आकर के कई पूछते थे कि बाबा ये इतना बड़ा घर ये सारा किसका है, तो बाबा क्या कहते थे, हाँ बच्चों का है। और भाई बहनों से लोग पूछते थे कि ये सब किसका है, तो सब क्या कहते, बाबा का है। तो ये बेहद का स्थान हुआ ना, कि देखो कोई भी मालिक बनने के लिए लड़ते नहीं है, हर कोई कहता है कि ये बाबा का है। तो बेहद के स्थान में रहने से बुद्धि भी बेहद में जाती है ना। घर में रहते हैं तो कितना तेरा मेरा होता रहता है ना, हम ना करें तो दूसरे भी करते हैं हमसे, है ना। तो वहां हद में बुद्धि रहती, भल हम पुरुषार्थ करते हैं कि घर की बातों में न रहे, ठीक है निमित्त अपना पार्ट प्ले करे, पर बुद्धि हमारी बाबा में बेहद में रहे। परंतु थोड़ा तो प्रभाव आता है, और यहाँ फ्री होकर आए, फिकर से फारिग होकर आए। चिंता तो नहीं है घर की माताओं को, हाँ बाबा को सौंप के आए हैं ना, और भाइयों को नौकरी की दुकान की चिंता नहीं ना, बाबा को सौंप के आए हैं, और हम फिर यहाँ बाबा को याद करते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ वहाँ योग नहीं लगता है तो हम कहते हैं कि आवाज हो रहा था, लोग आना जाना करते हैं, बाहर कुछ गीत बज रहे थे, घर में काम थे, तो योग नहीं लगा ऐसे कहते हैं ना। यहाँ पता चला ना योग क्यों नहीं लगता है, चेक किया कारण, यहाँ तो ये बाबा की वरदानी भूमि है, तपस्या भूमि है। यहाँ हमें पता चलता है ना कि हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ जाता है। तो योग ना लगने के कारण क्या है पता चल गए, कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई बात नहीं, पर योग ना लगने का कारण क्या है कि हम खुद डिटैच नहीं है, हम खुद डिटैच नहीं। और योग की पहली शर्त है डिटैचमेंट। योग का पहला अभ्यास कौन सा है, देह भान से न्यारा होना। ये पहला अभ्यास ही डिटैचमेंट का, उनको ये आत्मा का ज्ञान न होने के कारण वो बेचारे दुनिया से दूर जंगल में गए। बाबा ने हमें सिखाया कि दुनिया से दूर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन देहभान से न्यारा होना है ना। बार बार हम शरीर से अलग होते हैं, डिटैच होते हैं। देह भान के कारण ही हम दुनिया से अटैच होते हैं, देहधारियों से अटैच होते हैं, दैहिक प्रवृत्तियों से अटैच होते हैं। वैभव पदार्थ से अटैच होते। तो बाबा ने रूट पकड़ लिया, मूल बात पकड़ ली कि देह भान से ही डिटैच हो जाओ तो ऑटोमेटिक हम सबसे साक्षी बन जाते। सबसे साक्षी, मन में शुभ भावना, और वैसे हम सबसे न्यारे साक्षी दृष्टा बन जाते। अंदर में शुभ भावना, बाबा साथी, और बाकी सबसे साक्षी, तो तपस्या का आनंद ले सकते। ये फाउंडेशन पक्का छे। और एक बार जो बाबा की याद के आनंद का अनुभव करेगा, अपने ही शुद्ध सत्य आत्मा स्वरूप का अनुभव करेगा, उनको फिर छोटी छोटी बातें खींचती नहीं, उसको छोटी छोटी इच्छाएं नहीं होती। जो इस अतींद्रिय आनंद का अनुभव करेगा, इसको अतींद्रिय आनंद कहते हैं ना, आत्मा इंद्रियों से अलग होकर परमात्मा याद में जिस सुख का अनुभव करती है, उसे अतींद्रिय आनंद कहते हैं। तो जो स्व में बाबा में आनंद का अनुभव करते हैं, फिर उनको ये भौतिक, दैहिक, सांसारिक, अल्पकाल की प्राप्तियों की इच्छाएं खत्म होने लगती, क्योंकि हमें डायरेक्ट बाबा से मिलने लगता है। हॉटलाइन कहते हैं ना, डायरेक्ट बाबा से प्राप्ति अनुभव करने लगते हैं, तो फिर आत्माओं से पाने की इच्छाएं नहीं होती। और जब हमें कोई इच्छाएं नहीं, अपेक्षाएं नहीं, आत्माओं से हमें कुछ चाहिए नहीं, तो अपने आप हमारे टकराव, खटपट सब समाप्त हो जाता है। इसलिए संगम युग का वर्षा अतींद्रिय सुख है। इसका अनुभव करना है। बाबा कहते हैं ना, जो गायन शास्त्रों की, भागवत की, गोप गोपियों का था, वास्तव में वो हमारा गायन है ना। अतींद्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछे? नहीं, हमसे पूछे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछे। अगर आज कोई कहे तो मैं कहूंगी निमच के भाई बहनों से पूछ, कौन ऐसा, हमसे पूछे ना कि भगवान की याद का आनंद क्या होता है। जो इस आनंद के अनुभव में है, उनको फिर किसी से कोई अपेक्षा नहीं। कोई मान दे न दे, हमें क्या करना है, हम बाबा की श्रीमत पर करते रहते हैं। तो बहुत सुंदर विषय दिया है कि निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन, निर्विघ्न जो है वो एक ब्रेक कर देता है, विघ्न आता है तो हमारी लिंक टूट जाती है ना? जैसे रोड पर हम जाते हैं और बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो विघ्न भी हमारी स्पीड को ब्रेक कर देते हैं। हम तीव्र गति से नहीं जा सकते और समय अनुसार बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। और तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है, परसों ही बाबा की अव्यक्त वाणी में था, 22 तारीख संडे था ना, बाबा की मुरली में था कि बाबा का कहना और बच्चों का करना, टाइम नहीं लगाना, प्रैक्टिकल और सोचने में अंतर नहीं, ये तीव्र पुरुषार्थ। कल मम्मा का दिन है ना, एग्जाम्पल है मम्मा, छोटी आयु में कितना जल्दी संपूर्ण बन गई। हम उसी मार्ग के राही है, तो जो बार बार विघ्न में आते हैं उनकी लिंक टूटती रहती है, जिसके कारण स्पीड नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं ना, लाइट बार बार आवे जाए तो अच्छा लगेगा, कहेंगे ना भाई बंद कर दो। जब कंटिन्यूअस सप्लाई हो तो वो अच्छा लगता है। हमारी भी अवस्था बार बार ऊपर नीचे होती रहे तो वो अच्छा नहीं लगता, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, कि भाई इसको तो देखो तो आज उमंग में है, कल एकदम उदास है, आज नशा है, कल एकदम पानी में बैठे हुए हैं, तो लगेगा ना कि भाई ये एकरस पुरुषार्थी नहीं, बार बार ये डिस्टर्ब होते हैं। देखो दीवा बार बार आप जलाते हैं, फिर बुझ जाए, फिर जलाए, फिर बुझ जाए, फिर जलाए, तो मेहनत लगती है ना, एनर्जी खर्च होती। पर सेंसिबल व्यक्ति किसको कहेंगे, कि जब लगे कि दीवा बुझ रहा है, टिमटिमाने लगा है, तो सेंसिबल व्यक्ति क्या करेगी, ग्रीत डालेगी, उसे सुरक्षित कर देगी। बार बार बुझे, फिर जलाएं, फिर बुझे, फिर जलाएं, उसको सेंसिबल नहीं कहे। तो जब लगे कि हमारी लगन कम हो रही है, नशा उतर रहा है, तो समझदार बाबा का बच्चा किसको कहेंगे? जो अपने आप को सुरजित कर दे, जगा दे, सावधान हो जाए, अपनी लगन निश्चय को सेफ कर दे। तो बाबा की सिंपल बात, विघ्न मिटाने के लिए लगन की अग्नि चाहिए। लगन है तो किसी के भी धक्के की जरूरत नहीं है, नहीं तो धक्के से गाड़ी चलती है ना। बार बार बहन जी पूछे, ध्यान दे, साथी भाई बहने उमंग बढ़ाएं, तब हमारा पुरुषार्थ चले, फिर कोई ना देखे तो डिले हो जाए। नहीं, बाबा कहते ना, विघ्न मिटाने का साधन है लगन में मगन रहना। लगन में मगन रहना, इससे शक्ति भरती है, अवस्था बनती है और हमारे जीवन से दूसरों को प्राप्ति होती है, सेवा होती है। जो बच्चा अपने पांव पर चले, अपनी जिंदगी अपनी शक्ति से जिए, तो माँ बाप निश्चिंत रहेंगे। हर थोड़े दिन के बाद रोते रोते आते रहे तो माँ बाप भी कहेंगे कि भाई ये क्या है, अभी तक हमारे पर इसका बोझ है, हमें चिंता रहती। हरेक माता पिता का प्रयास क्या रहता है कि बच्चा अपने पैरों के बल चले। तो हम भी कैसे होने चाहिए? हाँ, बार बार हमारी टीचरों को चिंता होती रहे, ऐसे नहीं ना? हाँ, निश्चिंत हो जाएं हमारे बड़े, है ना, हमारे बाबा मम्मा दादियां दीदियां, हमारे निमित्त सब निश्चिंत हो जाएं कि ये माला के मणके है ही पक्के, हाँ, ये हिलेंगे नहीं। निश्चिंत करना है, परिवार वालों को भी पक्का हो जाए कि ये पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारिया, वो हमारे में निश्चय कर सके कि ये हिलने वाले नहीं है। कई बार हम समझते हैं ना कि लौकिक वाले बहुत विघ्न डालते, बंधन डालते, पर वास्तव में वो बंधन और विघ्न नहीं है, वो हमारी लगन को टेस्ट करते कि ये योगी बनने निकले हैं, निर्विकारी बनने की बात कर रहे हैं, पर सत्य है इसमें, तो वो हमारी परीक्षा लेते। पर जो इन बातों को सहते हुए भी मजबूत रहते हैं, फिर उनको निश्चय हो जाता है कि भाई ये शिव बाबा को नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अपने मित्र संबंधियों को भी बता देते हैं कि नहीं, ये पक्के योगी है। तो ऐसा सर्टिफिकेट ले लिया है ना सबने, हाँ देखो बरोबर हाँ नहीं कर रहे हैं, हाँ लिया है ना सबसे, कि अब दुनिया के विघ्न हमें हिला नहीं सकते। हिला सकते हैं? बरोबर बोलो। हाँ, कि अब दुनिया हमें हिला नहीं सकती, हमें माया खींच नहीं सकती। अक्सर भाई बहने बोलते हैं ना, माया आ गई। अरे हमें कैसे माया आ सकती? माया तो अज्ञानी को आ सकती है ना, हम तो जागती ज्योत है। देखो हम अपने घर में जागते हुए बैठे हों तो कोई चोर घुस सकता है? हम अपने घर में जागृत बैठे हों कोई हमारे आंगन में आकर कीचड़ा डाल सकता है कि क्या करूं, बैठा तो था पर वो डाल गए, ऐसे कहेंगे क्या आप? तो लोग कहेंगे ना, भाई क्या बैठा था तू, तुम्हारे होते ये कचरा फेंक के गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर हम जागती ज्योत है, ज्ञान स्वरूप है, लक्ष्य मजबूत है, तो कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता है। हम क्या समझते हैं कई बार कि विघ्न दूसरे डालते, विघ्न बाहर से आते, औरों से आते। कोई कहेगा लौकिक मित्र संबंधी विघ्न डालते हैं, कोई कहेगा हमारी ऑफिस में जहां हम नौकरी करते हैं वो फैक्ट्री में, वहां लोग ही ऐसे हैं, अवस्था बिगड़ जाती, ऐसे कहते हैं। हम दूसरों को दोषित करते हैं, वास्तव में दूसरे विघ्न नहीं डाल सकते। हम जब कमजोर होते हैं तो दूसरे के विघ्न महसूस होते हैं। इसलिए निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन बनाना है तो सबसे पहले ये पक्का कर लो कि दूसरे विघ्न नहीं डालते। हम कमजोर होने के कारण विघ्न के शिकार होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माया का काम है आना और तुम बच्चों का काम है भगाना, माया को भगाना। वो आएगी, बाबा कहते ना, क्योंकि तुम पुराने ग्राहक हो ना। हम माया के सबसे पुराने ग्राहक, द्वापर के शुरू में सबसे पहले उतरती कला में कौन आए? हम ही आए ना। तो आप बिजनेसमैन को पूछो, पुराने ग्राहक को कोई जाने देगा कि भाई ये तो मेरे बरसों के ग्राहक है, मेरी दुकान छोड़ के अब ये दूसरे की दुकान पर कैसे गए? तो वो दुकानदार पीछा करता है ना, भाई आप क्यों नहीं आते, आप तो हमारे ग्राहक हो ना। तो हम माया को छोड़ के बाबा के साथी बने हैं तो वो भी पीछा तो करेगी ना कि भाई आप तो मेरे बहुत अच्छे ग्राहक है, 2500 वर्षों से आप तो मेरे साथी थे ना, अब क्या हुआ? तो वो तो पीछा करेगी ना, इसलिए बातें आएंगी। बातों को आना विघ्न नहीं है, ये याद रखना। हम क्या समझते हैं, परिस्थितियां आती है, बातें आती है तो हम कहते हैं बड़ा विघ्न आ गया, वो विघ्न नहीं है। हमारा कमजोर हो जाना, उनके प्रभाव में आ जाना, श्रीमत छोड़ देना, उनके वश हो जाना, वो विघ्न। तो हमारी कमजोरियां विघ्न, ऐसा कोई जीवन नहीं हो सकता है जिसके सामने बातें ना आती हो, ऐसा हो सकता है? वे बातें कोई भी आए नहीं और तब मैं कहूं कि मैं निर्विघ्न हूं तो उसको निर्विघ्न कहेंगे? जैसे हम लोगों को समझाते हैं ना कि भाई जंगल में जाकर कोई कहे कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, तो उसको आप शक्तिशाली कहेंगे नहीं कहेंगे? भाई चूहे है ही नहीं और बिल्ली स्थिर रहे तो उसको आप स्थिरता कहेंगे? बातें हो ही नहीं तो मैं बहुत अच्छी चलूं, बहुत अच्छी सेवा करूं, मैं निर्विघ्न हूं, ऐसे कहेंगे? नहीं, बातें ही नहीं है। निर्विघ्न किसको कहा जाता है? कि बातें हों, परिस्थितियां हों, हिसाब किताब हों, पर हमारा निश्चय, हमारी पढ़ाई, हमारी लगन, हमारा पुरुषार्थ, हमारी धारणा, हमारी सेवा, हमारे सहयोग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो है निर्विघ्न। वो है निर्विघ्न। ऐसा हमें बनना है। व्यक्ति बदले, स्थान बदले, परिस्थिति बदले, पर हमारी लगन न बदले, हमारा पुरुषार्थ न बदले कि अब तो मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है सेंटर में, दीदी भी नहीं पूछती है, तो ये तो हमारी डिपेंडेंसी हो गई ना, हम व्यक्ति पर आधारित तो हो गए। नहीं, हमें शक्तिशाली बनना है। तो हम बाबा के बच्चे, हम स्वयं माया से मुक्त हो जाए, वो देख लो अपने आप को कि कौन सा विकार सताता है अभी भी। मुझे मेरे पुराने संस्कार, आदतें, वृत्तियों से ही विघ्न आते हैं ना, और कोई विघ्न नहीं डालते। तो इतना हम खुद को परिवर्तन करें, अंदर से हम इतने साफ हो जाएं, हम महसूस करें कि मेरे अपने में अब कोई विकार नहीं, तो ये आपको मौका है भट्टी में, मधुबन के वातावरण में हम खुद को चेक कर सकते हैं। साइलेंस में बैठ के, अलग अलग बैठ के देखो, अपने आप को देखो, कौन सा विकार, कौन से अवगुण, कौन सी गलत बात अभी भी मेरे अंदर है और वो अब नहीं होनी चाहिए। मैं अंदर से शुद्ध हूं, कर्म में ब्रह्मचर्य है, कर्मेंद्रियों से हम शुद्ध बने। वे हम अपवित्र शुद्ध खाते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं, करते नहीं, है ना? कर्म में संयम है तब हम ब्राह्मण कहलाते। अगर कर्म में संयम नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं कहला सकते। कर्मेंद्रियों से कंट्रोल है ना, पर अब मनसा में भी विकार ने। तो आपको महसूस होगा कि अब मैं निर्विघ्न, कोई विकार मन में नहीं। जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है, जानते हो ना कर्मेंद्रिय से क्या क्या नहीं करना है, पता है ना? रोज की मुरली में बाबा बताते रहते। जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है वो मन से भी नहीं करना। ये हमारा वर्तमान पुरुषार्थ है कि मन सा भी निर्विघ्न बन जाए। रोज अपने से पक्का करना है हमें, रोज बाबा के सामने बैठकर हम अपने से पक्का करें। लक्ष्य ढीला नहीं होने दें कि अब मन में भी विकार न रहे। बस जैसे घर में थोड़ा भी गंदगी अव्यवस्था अच्छी नहीं लगती है ना, परफेक्ट एक्यूरेट चाहिए ना? ऐसे ब्राह्मण जीवन भी परफेक्ट, बाबा कहते हैं ना संपूर्ण एक्यूरेट, हल्का सलका नहीं ब्राह्मण जीवन। एग्जाम्पल एक्यूरेट। खुद खुद को निर्विघ्न बनाओ। अक्सर विघ्न आते हैं तो हम उनका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। विघ्न क्यों आया तो हम क्या सोचते हैं, इसके कारण है, इसके कारण आया, ऐसा हुआ ना इसलिए आया, उसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा आया, है ना? ये ठीक हो जाए तो बात ठीक हो जाए। तो दोनों बातें पक्की रहे, विघ्न बाहर से नहीं आते हैं, खुद की कमजोरियों से आते। जो शक्तिशाली बन गए ज्ञान योग धारणा सेवा में, आप देखिए हमारे बड़े भाई बहने हमारी दादियां, उनको विघ्न ने कुछ किया, विघ्नों ने रोका, वो तो कितनी बड़ी जवाबदारी संभालने वाले। दुनिया से अज्ञानियों से सिर्फ थोड़ी बातें आती, हमारी आपस में भी तो एक दो के आगे बातें आती। हम सब नंबरवार पुरुषार्थी है तो बातें तो आती है ना, स्वभाव संस्कार के टकराव तो होते रहते ना, पर इन सब बातों को क्रॉस किया, मूल लक्ष्य को कभी नहीं भूले, वो महारथी कहा जाता है। महारथी माना जो विघ्न में अटके नहीं, आगे ही बढ़ते रहे। विघ्न बाहर से नहीं आते, खुद की कमजोरी से आते हैं, इसलिए विघ्न का सॉल्यूशन बाहर से नहीं मिलता है। घर वाले ठीक हो जाएं, मेरे साथी ठीक हो जाएं, हमारा सेंटर ठीक हो जाएं, हमारे को ये हो जाए, नहीं। विघ्नों का सॉल्यूशन अंदर से ही आता है, खुद की अवस्था से ही मिलता है, इसलिए बाहर नजर नहीं करनी है। कोई भी बात आती है तो हम क्या करते है? मान लो मेरी कोई कंप्लेन होती है तो हम क्या करते? किसने कंप्लेन की पहले ये बताओ। हम व्यक्ति को ढूंढते हैं कि किसने मेरे लिए, नहीं, खुद को देख लो। खुद को देखना है, खुद को ठीक करना है, फिर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा विघ्न का कारण हम हैं या क्या है। इसलिए सॉल्यूशन भी हम हैं। हमें झुकना चाहिए, बदलना चाहिए, कुछ छोड़ना पड़े, समाना पड़े, पर खुद को निर्विघ्न बनाने का आधार हम खुद ही है। बाबा मदद कर ही रहा है, कहीं तो बाबा से नाराज हो जाते हैं, बाबा क्या कर रहा है, बाबा देखता ही नहीं है। अरे बाबा की बात थोड़ी है इसमें, बाबा से नाराज नहीं होना है, वो तो मदद करने वाला है ही। इस साल भी जो सीजन पूरी हुई 2013 से 2014 की, जो बाबा की सीजन पूरी हुई, इस साल भी बाबा ने कहा जो स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करेंगे वो बाप की मदद का अनुभव करेंगे। बाबा मदद के लिए तैयार है, बंधा हुआ है, हमें दृढ़ता रखनी है कि कुछ भी हो जाए मुझे विघ्न में नहीं आना, मुझे अपनी लक्ष्मण रेखा के बाहर पांव नहीं निकालना है। निर्विघ्न रहने का साधन श्रीमत है। श्रीमत की रेखा के अंदर माया नहीं आ सकती, विघ्न नहीं आ सकती। श्रीमत ही छत्र छाया है, सुरक्षा है। अगर हम बाबा का कहा हुआ नहीं मानते हैं, फिर कितना भी हम पुकारे बाबा मदद नहीं कर सकता है। फिर आप कहो कि मैं तो कितना बाबा को कहती हूं पर बाबा सुनता ही नहीं, ऐसा नहीं है। मदद पूरी मिल सकती है पर हम भी तो बाबा का माने ना। अगर हम श्रीमत पर हैं, अचल रहो, अपने आप मदद मिलनी है, बात ठीक होनी ही है। हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम मजबूत रहते हैं, फिर डिले हो जाते हैं कि देखो बाबा इतना दिन से मैं कहती हूँ, बाबा मदद ही नहीं करते। पर हमें श्रीमत में विश्वास होना चाहिए कि श्रीमत सत्य है, मुझे उसका पालन करना ही है। हो सकता है मुझे तुरंत मदद का अनुभव ना हो, क्योंकि मेरे भी तो हिसाब किताब है, जो मैंने ही बनाए तो मुझे ही चुकाने होंगे ना। भूले हम करें, हिसाब हम बनाएं, और फिर हम कहे बाबा मदद क्यों नहीं करता है? बाबा मदद करता ही है, उसका संगम युग में हमें वचन है कि तुम एक कदम चलो, मैं हजार कदम तुम्हारे साथ। हमें डगमग नहीं होना है। श्रीमत का पालन करने के बाद भी धीरज चाहिए, हिम्मत चाहिए। तुरंत सफलता न भी मिलेगी, क्योंकि हमारे हिसाब किताब तो हमें चुकाने पड़ेंगे। हिसाब हमने ही बनाए, जरूरी नहीं है अज्ञान काल में बनाए, ज्ञान में आने के बाद भी हमने कितनी भूलें की, कितनी अवज्ञाएं की। ब्राह्मण बनने के बाद तो एक का 100 गुना हिसाब है ना, तो वो हिसाब तो चुकाने है ना। तो धीरज, हिम्मत और बाबा की याद, श्रीमत पर चलते रहे। रास्ता साफ होना ही है, सफलता मिलनी ही है, ये गारंटी रहे। तो हरेक अपने जीवन की जिम्मेवारी ले सकते हैं, हाँ, कि हम अपने जीवन को निर्विघ्न बनाएंगे। अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हैं ना हर एक, हाँ? तो सबसे पहले बाबा तो कहते हैं ना, हमारा संगठन, हमारा यज्ञ, हर जोन, सब जोन, हर सेंटर निर्विघ्न बने। तो शुरुआत कहां से करेंगे, हा? खुद से करेंगे, हम खुद से करेंगे। हम एक एक ब्राह्मण निर्विघ्न बन जाए तो यज्ञ तो सेकंड में निर्विघ्न बन जाएगा, क्योंकि अब विघ्न बाहर से नहीं आते, अब सारी दुनिया बाबा की मददगार है, अब सब सहयोग देते हैं ब्रह्मा कुमारी, सब जानते हैं इनका ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये बहुत महान संगठन है, हर कोई जानता है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके जीवन की ऊंची धारणाएं, यथक सेवाधारी वाले लोग हैं, ये चरित्रवान लोग हैं, दुनिया आप जान चुकी है। अब लोग विघ्न नहीं डालते, अब विघ्न कहां से आ रहे हैं? हमारे ही आपस में विघ्न आते, हमारे स्वभाव संस्कारों से विघ्न आ रहे। हम जो नंबरवार पुरुषार्थी हैं, हमारे आपस में विघ्न स्वभाव संस्कार के टकराव, मान शान की बातें, मैंपन मेरेपन की बातें, बाहर के विघ्न हटे तब तो इतना बड़ा परिवार बना, तब तो इतनी सेवा फैली। आज सारी दुनिया में बाबा का कार्य फैल गया, विघ्न मिटा है ना हम सब ने। अब हमारी अंदर की छोटी छोटी बातें हैं, हम रूठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज भी बाबा ने क्या कहा? लड़ना, झगड़ना, क्रोध करना, ये सब क्या है? अपवित्र कार्य है, ये अपवित्र कार्य है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, भाई पहले माँ बाप होते हैं, फिर बच्चे, परिवार बनता है, और फिर बच्चे ही लड़ते झगड़ते हैं, लौकिक में ऐसे ही होता है। तो ये छोटी छोटी बातें संस्कार स्वभाव की, मैं तू मेरा तेरा, ये छोटी छोटी बातें। अब इतना जो हम सबने पवित्र योगी जीवन बनाया, वो बनाने के बाद अब क्या करना है? छोटी छोटी बातों में झगड़ना है? हाँ, रुठना रुसना है, मैं तू करना है। अब इस पवित्र योगी जीवन का उपयोग किसमें करना है? किसमें करना है? एग्जाम्पल बनना है ना। बाबा कहते हैं ना, चेहरे और चलन से सेवा करो। अब कौन सा कार्य करना है? बाबा को प्रत्यक्ष करो। अब हमारा ये कार्य है, पर बाबा को प्रत्यक्ष करने के बजाय हम खुद को ही प्रत्यक्ष करने में लग गए हैं। बाबा कहते हैं मैंपन आ जाता है बच्चों को, मैंने ये पाठशाला खोली, मैंने सेंटर खोला, मैंने इसको ज्ञान में लाया। हम ही उनके आगे खड़े हो जाते हैं, बाबा का बच्चा है, बाबा की सेवा है, बाबा के स्थान है, बाबा का घर है। अब अपने को बीच से हटाना है तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। हम ही पर्दा बन गए हैं, हम ही दीवार बन गए, बाबा छिप गया है। इसलिए अपना अभिमान नहीं, वर्णन नहीं, मैंपन नहीं, हम सब जानते हैं कि जो कुछ है वो बाबा है, हम तो निमित्त मात्र है। हम तो निमित्त मात्र है ना भाई, हमारे समझाने से, हमारी सेवा करने से कोई बाबा का बच्चा बना तो हम समझते हैं कि मैंने किया, पर बाबा कराता है। ये हम खुद समझे, हमें दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। कई बार हम दूसरों को कहने लग जाते, हमें दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है, हमें खुद धारणा करनी बस। छोटी मोटी बड़ी कुछ भी सेवा करें, हम खुद को पक्का कराएं कि बाबा कराते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। बाबा कह रहे हैं, जब तुम्हारी महिमा हो तो अंदर उसी क्षण किसको याद करो, बाबा को याद करो कि बाबा ये आपकी महिमा है, मेरी नहीं है। ये करो, उस समय याद करो। हम खुश ना हो जाएं, फूल ना जाएं कि हाँ हमारी महिमा नहीं, याद करो बाबा ये आपकी महिमा है। ये बहुत जरूरी है। मेरापन नहीं, हमने बाबा को दिया फिर हमारा अधिकार रहता है हाँ? फिर हमारा अधिकार हम कर सकते हैं? नहीं, हमने बाबा को दे दिया ना, वो बाबा का हो गए। चाहे हमने मकान दिया, पंखा दिया, अलमारी दी, कुछ भी दिया, सालों तक बुद्धि में रहता है मैंने ये दिया था, तो हमने छोड़ा ही नहीं ना। अभी भी हम ही मालिक बन के बैठे हैं तो जमा कैसे हुआ, भाग्य कैसे बनेगा। इसलिए वर्णन भी नहीं। बाबा का है बस, और ये सत्य है। बाबा ने हमारे कर्म में बल भरा, हमारे भाग्य को जगाया, तभी ये प्राप्तियां हुई है, वरना पहले क्यों नहीं थी। आज हम पवित्र हैं, योगी हैं, श्रीमत पर हैं, सेवा में हैं, तो दुनिया को हमारे लिए रिस्पेक्ट है, ऊंची नजर से देखते। अगर ये हमारे जीवन में न रहे तो रिस्पेक्ट मिलेगा
नहीं।
तो हम निर्णय कर ले कि हमें इस ईश्वरीय परिवार में या सेवा में हमें विघ्न नहीं बनना है, हमें समस्या नहीं बनना है। हम जो मदद कर सकते हैं, बाबा के साथी बन सकते हैं बने, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, निर्संकल्प रहो, विघ्न नहीं डालना। हमारे कारण विघ्न नहीं आना चाहिए, हम त्याग कर दें कोई बात नहीं। हमें पता है हमारा किया हुआ अच्छा कहीं जाएगा नहीं, हमें मिलेगा ही। हमें लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं, ये हमारा रास्ता ही नहीं है। हमारा रास्ता तो समझ, प्यार, चरित्र से चलना है। बाबा हमें देता ही है, हम बाबा को भूल, आत्माओं से इच्छाएं रखने लगते हैं ना, इसलिए विघ्न आते हैं। और कोई कुछ भी करे, हम उसके मालिक थोड़ी है, हम तो अपने आप के मालिक हैं। इस ईश्वरीय परिवार में कोई कुछ करता है, निमित्त आत्माएं बैठी है, वो जवाबदार है। हमें व्यर्थ में नहीं जाना है, हमें थोड़ा उपराम होने की आवश्यकता है, हमें न्यारा बनने की आवश्यकता है। बाबा ने एक ही विधि हमें बताई है, न्यारा और प्यारा, बस। अलौकिक परिवार में अलौकिक बनकर चलना है, यहाँ लौकिक नहीं बनना है। जैसे ही आप लौकिक साधारण बनते हैं, बातें आने लगती हैं। न्यारा और प्यारा, हम अलौकिक हैं, हमें सब अलौकिक लगेगा। तो जो बाबा की इच्छा है कि अब ये बेहद का यज्ञ निर्विघ्न बने, वो हम पूरी कर सकते हैं। हम एक मत हैं, एक रस हैं, ये रिजल्ट ला सकते हैं। पसंद है ये मेथड? हाँ, कर सकते हैं तो हाथ ऊपर करो। कुछ भी हो, श्रीमत का मार्ग न छूटे, हमारी ईश्वरीय मर्यादा का भंग न हो, हमें प्यार से, समझ से चलना है, सेवा करनी है और फिर न्यारा होना है। ओम शांति। तो हम सभी मिलकर पक्का लक्ष्य बना के जाएंगे कि हम खुद निर्विघ्न रहेंगे, किसी को विघ्न रूप नहीं बनेंगे, यज्ञ में आने वाले विघ्नों को समाप्त करने में मददगार बनेंगे, विघ्न डालने वाले के साथी नहीं बनेंगे। तो हम अभ्यास करेंगे मिलकर। सभी खड़े हो जाएंगे। कब से आप बैठे हैं? फिजिकली थक जाते हैं, हाथ पांव स्ट्रेच कर ले। थोड़ा खड़े खड़े दौड़ेंगे, खड़े खड़े। हाँ, खड़े खड़े दौड़ेंगे कुमार भाई, सब यंग। हाँ, अच्छा, बिल्कुल हल्के हल्के, जैसा शरीर वो देख के हल्के हल्के जंप लगाएंगे, हल्के हल्के। ठीक है, अब हम अभ्यास करेंगे। बिल्कुल स्वयं में एकाग्र हो जाएं। सबसे न्यारा साक्षी प्रकृति में अपने निराकार आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाएं। पहला अभ्यास स्वयं में मस्त रहना है। अपनी धुन में खोए रहना है। मेरा अपना स्वरूप शांत शुद्ध सत्य दिव्य देहभान से न्यारे इंद्रिय रसों की गृहस्थी से मुक्त स्वयं के लाइट और माइट स्वरूप में एकाग्र। राइट साइड घूम जाइए। राइट साइड घूम जाएं। दूसरा अभ्यास बाबा में मग्न रहे। बाबा के लव में लीन रहे। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा हर क्षण हर स्थान का साथी मेरा बाबा है। मेरे सर्व संबंध उनसे मेरी सर्व प्राप्तियां उनसे। मैं और मेरा बाबा अब तो बाबा ही बाबा, राइट साइड घूम जाए, तीसरा अभ्यास प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं के पार्ट में ट्रस्टी बनकर चलना। निमित्त भाव में रहना, बाबा मालिक है, मैं ट्रस्टी निमित्त मात्र हूँ। मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा करण करावन हार है। जब मैं अपने आप को ट्रस्टी समझती हूँ, निमित्त भाव में रहती हूँ, तो मैं लाइट बन जाती हूँ, हल्की हो जाती हूँ। और मेरा अटेंशन रहता है, मुझे श्रीमत अनुसार करना है। अन्य के पार्ट के लिए साक्षी भाव से देखें, अंतर में शुभ भावना, सहयोग की भावना, बाकी न्यारे और साक्षी। राइट साइड घूम जाएं। चौथा अभ्यास, सदा वतन वासी रहना। भल शरीर से इस दुनिया में है, मन और बुद्धि से असली वतन में रहना या अव्यक्त वतन में रहना। राइट साइड घूम जाए। पांचवा अभ्यास, अब मास्टर दाता बनना। प्यारे बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, भरपूर कर दिया है, अब दाता बन सबको देना है। सुख दे, शांति दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, खुशी दे, हिम्मत दे, जो भी अलौकिक प्राप्तियां हुई हैं, वो प्रसाद सबको बांटे। बैठ जाएं। नित्य के ये अभ्यास हमें भरपूर कर देते हैं, हमें रूहानी अलौकिक बना देते हैं। हमारा रूहानी बन जाना अलौकिक बन जाना ही निर्विघ्न बनना है।